તારીખ 16/12/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 200 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 88
કેવું અભિયાન છે કે પોતાના ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन होता है, उसी समय ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन भी ज्यों का त्यों है जो उस अज्ञान को भी बताता है। जैसे ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन हुआ तो उसी समय ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन भी है जो कि ये बताता है अज्ञान हुआ, तो वो जीव पकड़ नहीं पाता है, उसमें आवरण रहता है, उसका क्या कारण है? तो ज्ञान है और वो ज्ञान से वो पकड़ता है ज्ञान रूप परिणमन को भी, पर फिर भी वो उसको नहीं आविर्भूत कर पाता है, इसका क्या कारण है?
तो जब ज्ञान ज्ञान रूप परिणमता है तब ज्ञान का ज्ञान रूप तो परिणमन तो है ही, तो ज्ञान में अगर तो अज्ञान रूप परिणमन भी है, उसका आवरण आया कहां से, क्यों आया, ऐसा प्रश्न है। ज्ञान में आवरण क्यों आया? ज्ञान ज्ञान रूप भी परिणमन करता है और अज्ञान रूप भी परिणमन करता है, तो फिर ज्ञान में आवरण कैसे आया?
आवरण कैसे आया? और फिर ये जब ज्ञान को ये आविर्भूत क्यों नहीं कर पाता है, ज्ञान का तिरोभूत बना रह जाता है, वो आविर्भूत करना चाह करके भी क्यों नहीं कर पाता है?
और जो ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है वो तिरोभूत हो रहा है, यानी छिप गया है और आविर्भूत मैंने प्रकट नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण? ऐसा प्रश्न है। तो ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन है, ज्ञान सामान्य रूप परिणमन है, ज्ञान वेदन रूप परिणमन है, और ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन है वो ज्ञान विशेष रूप परिणमन का पहलू है। अब जो विशेष ज्ञान है उसमें अज्ञान है वो क्यों है, उसमें आवरण क्यों है, तो विशेष ज्ञान के माध्यम से जीव दूसरे पदार्थ को जानते ही उसमें नमत्व कर लेता है, एकत्व कर लेता है, उसका अवलंबन लेकर जानता है, उसकी भिन्न सत्ता को भिन्न सत्ता रूप नहीं जानता है, इसलिए ज्ञान को आवरण आता है, जिसको अज्ञान कहते हैं। और पदार्थ को जान करके उसमें अच्छा बुरा इष्ट अनिष्ट ऐसी कल्पना करता है, उस कल्पना के वशात विशेष ज्ञान का अज्ञान का आविर्भाव रहता है और सामान्य ज्ञान तिरोभूत हो जाता है। यही कारण है कि ज्ञान का सामान्य का ज्ञान रूप परिणमन का आविर्भाव क्यों नहीं होता है, इसका यही कारण है। इसलिए इस प्रकार की जो विटंबना है, दुख का कारण रूप परिस्थिति है, उसको मिटाने के लिए जीव को ज्ञान विशेष को गौण करके तिरोभूत करके ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करना चाहिए। स्वरूप लक्ष्य पूर्वक आत्मस्वरूप का ध्रुव स्वरूप का लक्ष्य करके सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हो सकता है, जिसको मूल सर्जात्म स्वरूप की पहचान नहीं है और लक्ष्मण वा स्वरूप नहीं आया हो तो ज्ञान सामान्य का आविर्भाव कर नहीं सकता। ज्ञान सामान्य का आविर्भाव तो स्वरूप के भाव भाषण से ही हो सकता है, ये पहले घटना घटी है भाव भाषण की, इस परिस्थिति पहले हुई हो, सब्जेक्ट कंडीशन को सामान्य ज्ञान का आविर्भाव कोई भी जीव करता है तो उनको मानवभूति की प्राप्ति होती है, समय दर्शन की प्राप्ति होती है। यहाँ तो बात दूसरी है कि जीव अनादि से अपना स्वरूप को भूल गया है, वही इसका अज्ञान है, और इस प्रकार का अज्ञान ज्ञान के प्राप्त होने से ज्ञान मिलने से मिल जाता है, नाश हो जाता है, ऐसा भी संत मानना चाहिए। उसमें फिर कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, कि ज्ञान मिले और अज्ञान का नाश नहीं होगा तो वो शंका की गुंजाइश वहाँ नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणमन कर रहा था, जो अज्ञान रूप परिणमन कर रहा था वही ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन करने लग गया।
यहाँ बोल रहे कि जैसे कि अज्ञान नीचे तो ज्ञान होगा ऐसा नहीं लिया, यहाँ लिया ज्ञान होगा तो अज्ञान मिटेगा, मतलब इसमें लिया ऐसा नहीं लिया है कि अगर अज्ञान मिटेगा तो ज्ञान होगा, यहाँ लिया ज्ञान होगा तो अज्ञान मिटेगा, तो इस ये लॉजिक लेने के पीछे क्या अभिप्राय है?
हाँ, अज्ञान तो है ही, तो अज्ञान मिटेगा तो ज्ञान होगा, तो अज्ञान को स्वयं मिटता है क्या?
जैसे ज्ञान का जीव को परिचय नहीं है, पहचान नहीं है,
उनका तो रास्ता दिखाएंगे, ज्ञान कैसे होगा वो तो कहना चाहते हैं। इस पत्र में जो कहने का इंटेंशन है, मोटिव है, वो तो वो है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। अब तो इतने प्रतिपादन करते हैं कि जिसको ज्ञान मिलता है उसका अज्ञान का नाश, जहाँ तक ज्ञान नहीं मिलता है अज्ञान जो अनादि से है वो चालू ही चालू रहता है। तब कहीं कहते हैं कि ऐसे ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होनी चाहिए, यह स्वाभाविक समझ में आता है, फिर भी जीव लोक लज्जा आदि कारणों से अज्ञान का आश्रय छोड़ता नहीं है, यही अनंतानुबंधि प्रसार का रूप है। बहुत सुंदर लिखा है, या ऐसा नहीं लिखा कि ज्ञान की प्राप्ति अपने स्वरूप में से होनी चाहिए, आत्मा में से होनी चाहिए, ऐसा नहीं लिखा, जबकि होती है आत्मा में से,
आत्मा में से होती तो पहले भी होनी चाहिए।
इसलिए लिखा कि जिस आत्मा में अनंत ज्ञान भरा है फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो ज्ञान प्राप्ति का कोई दूसरा इलाज है कि ज्ञानी के पास से ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्या प्रश्न पूछते हैं हम, वो प्रश्न पूछते हैं कि क्या ज्ञानी ज्ञान को देता है क्या?
देता है,
देता है?
आत्मा को देता है।
ज्ञान तो इसका एक गुण या पर्याय है, ज्ञानी तो पूरा आत्मा को देता है, ठीक, तो प्रभु ये क्या कृपालु देव को द्रव्यानंद का ज्ञान नहीं होगा क्या? क्या इस ज्ञानी के पास दूसरे का आत्मा होता है कि जेल से निकाल करके दे, लेकिन देखो देखो 10,000 रुपया करके दिया, 5,000 रुपया दिया, कैसे देता होगा? आत्मसिद्धि में ऐसा क्यों नहीं लिखा? ये चर्चा में जिला दीजिए आश्रम में किया, आश्रम में सजाए करते थे आश्रम में जिला दीजिए, तो प्रभु ये आपियो ऐसा लिखा, तो ते तो प्रभु ये दर्शा दियो ऐसा क्यों नहीं लिखा? ऐसे तो आत्मा को दर्शाते हैं, वास्तव में तो ऐसा ही बनता है कि ज्ञानी आत्मा को दर्शाते हैं, लेकिन जो आत्मा को का निर्देशन करते वक्त जिस चेष्टा से आत्मा दिखाया जाता है और जो आत्मा उस वक्त देखता है उनको ऐसा लगता है कि वो आप ही हो, दिखाया नहीं आप ही दिया है, मुझे दिखाया नहीं मुझे तो दिया है। और देखो कि हमारे कोई स्वजन है, डॉक्टर ने बोल दिया ये तो खत्म हो गया है, प्राण स्पष्ट हो गया है, अभी मुर्दा है, जीवंत कर दे तो हम उसको क्या कहेंगे, कलंक कहेंगे उसको, क्योंकि उसने प्राण दिया। तो मुमुक्षु जीव को अनुभव है कि मैं तो मुर्दा था, मैं क्या था, मैं तो चलता फिरता एक मुर्दा था, मेरे में कोई प्राण का संचार किया है, मुर्दे में प्राण का संचार किया है, तो ये श्री गुरु ने किया है, ज्ञानी पुरुष ने किया है। तो वहां ज्ञानी पुरुष भी नहीं बोलेगा, उसको क्या बोला, प्रभु बोले। जैसे वैसे प्राण कोई ला दे तो उसको भगवान कहेंगे, तो यहां भी ज्ञानी छद्मस्त है फिर भी उसको प्रभु बोला है, उसको ज्ञानी नहीं बोला। तो वाकई उनको क्या लगता है, मुमुक्षु के हृदय में बैठकर वो गाथा लिखी है, खुद ज्ञानी है, ज्ञानी के स्थान पर बैठकर के वो गाथा नहीं लिखी है, मुमुक्षु के हृदय में बैठकर के वो गाथा लिखी है। मुमुक्षु को क्या अनुभव होता है, प्रतिपालन करने की पद्धति है, तो कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होनी चाहिए, बिना ज्ञानी किसी को ज्ञान हुआ नहीं, न होने वाला भी है, ऐसी प्रणाली से वस्तु स्थिति है जिसका उल्लंघन हो सकता नहीं है। तो वस्तु स्थिति की मर्यादा है, पावे नहीं गुरु कल बिना यही अनादि स्थित, इसलिए यहां श्री गुरु का जो आदर है उसको निमित्त का आदर नहीं बोला जाता, उसी को आत्मा का आदर बोला जाता है। गुरुदेव ने वो बात कही बंगाल अनुसार 827 नंबर का विश्रामक है, उसमें वो बात कही कि यहां ये निमित्त का विवेक नहीं है, निमित्त का आदर नहीं है, ये तो वास्तव में आत्मा का आदर है, आत्मा का विवेक है। जबकि गुरुदेव के विषय में अफवाहें ऐसी चलती थी तो निमित्त को मानते नहीं है, उपादान की बहुत बातें बताते हैं, निमित्त को नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं है। तो निमित्त को मानते थे कि नहीं मानते थे, वो बात फिर शंका वाली रहती नहीं, स्पष्ट तो लिखा है निमित्त का विवेक नहीं है, ये आत्मा का विवेक है। अगर ऐसा विवेक जिसको नहीं आता है वो निश्चय में भी भुला हुआ है। हमारा ज्ञान तो हमारे आत्मा में से आएगा, ज्ञानी से नहीं आएगा, तो निश्चय में भुला हुआ है ऐसा लिखा है, बोले ना तो निश्चय में भी भुला हुआ है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो व्यवहार में भी बुला हुआ है। ऐसी बात देखिए, तो गुरु विषय का प्रतिपादन जब चलता है तो सभी ज्ञानियों का एक ही अभिप्राय होता है, ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी के पास से होनी चाहिए, तो स्वाभाविक समझ में आता है, उसमें अस्वाभाविक कोई बात नहीं है, वो स्वाभाविक समझ में आता है। जिसको उस तरह से समझ में नहीं आता हो उनकी समझ अस्वाभाविक है, माने काल्पनिक है, अस्वाभाविक माने काल्पनिक है, ये स्वाभाविक समझ में आता है। फिर भी जीव लोक लज्जा आदि कारणों से अज्ञान का आश्रय कोई छोड़ता नहीं है। क्या कि मैंने कुल धर्म में जो गुरु है, गुरु के स्थान में होते हैं, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं होता है, हमारे संप्रदाय में तो साधु है, गुरु है, उनको जाना चाहिए और उसको मानना चाहिए। तो उनका सदगुरु नहीं छोड़ता है, सरकार में हमारी समाज वहां पूरी समाज वहां जाती है, हमारे संप्रदाय की पूरी समाज वहां जाती है। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारी टीका टिप्पणी होगी, क्या हमारा समाज में जो स्थान है वो स्थान बना रहेगा नहीं, उसमें फेरफार हो जाएगा। लोक लज्जा, लोगों की शर्म से वो उनका आश्रय नहीं छोड़ सकता है और ज्ञानी का आश्रय नहीं कर सकता है।
एक है कि संप्रदाय बुद्धि वालों को और संकुचित बुद्धि वालों को क्या कभी भी धर्म प्रकट हो सकता
है? नहीं हो सकता है। ऐसे संप्रदाय बुद्धि वाले को धर्म प्रकट हो सकता है कि कभी हो सकता नहीं है। क्यों? कि इसका आश्रय छुटेगा तब ज्ञानी का आश्रय होगा, दोनों का आश्रय एक साथ हो सकता नहीं है। हम इधर भी जाए इधर भी जाए बात बनने वाली नहीं है।
ये संकुचित बुद्धि का सूचक है।
हाँ, संकुचित बुद्धि है कि हमको हमको हमारे संप्रदाय वाले कोई मानेंगे, दूसरे को मानेंगे नहीं, तो ये संकुचितता होगी। इसलिए कृपालु देव ने मां बहुत विशालता से लिया है कि अन्य मत में भी मार्गानुसार पुरुष होते हैं, जो निरंजन को बुझने वाले हैं, मेरे पाने वाले हैं, मेरे वो भगवान होने वाले हैं, ऐसे आत्माएं अपनी मतलब होते हैं। इसलिए अन्य मति है ऐसा करके एलर्जी होना चाहिए नहीं। खास करके अपने अपने संप्रदाय की बुद्धि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं, अपने संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। ऐसे जाने अनजाने में ऐसे मान्यता हो जाती
है। जैसे हम लोगों के जो तीर्थंकर देव हुए हैं वर्तमान के, तो वो एक भी जैन कुल में पैदा नहीं हुए थे,
क्षत्रिय
सब क्षत्रिय।
फिर उन जमाने में क्षत्रिय लोग भी जैन थे, आज के जमाने में जो क्षत्रिय लोग जो जैन नहीं अजय है, लेकिन उस जमाने में क्षत्रिय लोग थे वो जैन थे। जैसे रामचंद्र जी हुए बहुपुर में तो जैनपुर था, श्री कृष्ण हो गए हरिवंश में तो ये जैनपुर था। कब जैन हुए उसका इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन काफी आचार्य ने पुराण देखते हुए उनके आगे वाली पीढ़ियों का वो जैन थे इसका वर्णन किया है, बहुत सी पीढ़ियों का वर्णन किया है। करीब एक तृतीयांश ग्रंथ इसमें लिखा है कि वो इनके दादे दादा उनके दादे उनके दादा उनका दादा वो जैन थे, उसके नाम खान दिए। जबकि इसके नए नए संप्रदाय हो गए, श्री कृष्ण का भी नया संप्रदाय हो गया, रामचंद्र जी का भी नया संप्रदाय हो गया, तो उस संप्रदाय वाले के पास उतनी वंशावली नहीं है जितनी हमारे आचार्यों के पास है। तो इस बात का सबूत है कि उसने सही लिखा था, दूसरों ने वो ग्रंथ लिखे वो सही नहीं लिखे, क्योंकि वो इनके पूर्वजों को नहीं जानते थे, हम तो इनके पूर्वजों को भी जानते हैं ऐसा करके। तो वो जैन थे, रामचंद्र जी भी दीक्षा लेकर के मोक्ष में पधारे हैं और श्री कृष्ण को जो द्वारका बनी वो देवो बनाते हैं, सोने की द्वारका बनाई थी, 16,308 नाने थे, तो 16,108 महल बनाए प्रत्येक रानी के अलग अलग, पर प्रत्येक रानी को पूजा करने के लिए जिन मंदिर बनाए 16108 द्वारका में, तो अपने मंदिर में जाएंगे पूजा करेंगे, और जिन मंदिर बनाए ऐसे माताएं, पर दूसरे घर के मंदिर नहीं बने द्वारका में। आज एक एक का नाम निशान नहीं है वहां, 16108 मंदिर बने, जिन मंदिर बने थे देवों ने बनाए, वो भी सोने के बनाए थे, महल भी सोने के और मंदिर भी सोने के, इसलिए वो द्वारका सोने के थे ऐसा बोलने में आते हैं आज भी। और वो जैन नहीं होते तो जैन मंदिर कहां से बनता? रावण भी जैन था, वो रामायण को लिखे है रविशंकराचार्य ने, सत्य पुराण के लिखे, तो राम रावण का जब युद्ध चलता है तो मेरे घर तो शाम को युद्ध समाप्त होगा, जब सूर्यास्त के साथ ही बंद हो जाता है, तो बीच में रावण है, उसने देखा कि हमारे युद्ध लड़ाई में हम हार गए हैं, थोड़ी और विद्या प्राप्त कर ले, तो शांतिनाथ भगवान के मंदिर में, तो शांतिनाथ भगवान का जिनालय लंका में बनवाया था, उस पर साधना करके बैठ जाता है, और विक्टो पावर से ऑर्डर किया हमारी साधना चल रही है, युद्ध में कुछ भी परिस्थिति है हमको साधना से विचलित मत करिएगा, हमारी साधना में इतने दिन तक हमारी साधना चलेगी, बाद में हम आ रहेंगे। सदर को बदला और मैं सब विद्या को प्राप्त करता था, तो शस्त्र की विद्या को प्राप्त करता था, लेकिन जिन मंदिर का वहां उल्लेख है वो भी जैन था, और हमारे रामायण के अनुसार वो भावी तीर्थंकर है, लक्ष्मण जी भी भावी तीर्थंकर है, और रामचंद्र जी तुलसी भाव में मोक्ष में पधारे, और सीता जी वही रावण के गणधर होने वाले हैं। देखो क्या पर्याय की विचित्रता है, जिस सीता जी का हरण करके राम रावण का युद्ध हुआ, जिसको आज भी रामायण बोलते, किसी का युद्ध हो जाता है तो क्या होगा, तो रामायण हो गई। कोई एक तीर्थंकर बनेगा, दूसरा जी जिसका घर कहते हैं कि लोक लज्जा के कारण से अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ना, यही अंतांगे कसार का मूल है, उसने चोरी किया इसलिए, हिंसा किया इसलिए अंतांगे कसाय, ऐसा नहीं कहा। जो गुरु नहीं है, ज्ञानी नहीं है, उसको ज्ञानी या गुरु मानना यही अनंतानुबंधी कसाई का मूल है। क्योंकि धर्म से विरुद्ध न्यास से विरुद्ध चले जाते हैं, जो धर्म विरुद्धता होती है, सच्चे धर्म की विरुद्धता होती है, यही कारण से होती है, और फिर अनेक प्रकार के दोष की उत्पत्ति, दोष की परंपरा मूल में यही कारण से होती है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति जिसको चाहिए उसे ज्ञानी की इच्छा से वर्तन करना, ऐसा जिनारम आदि सर्वशास्त्र कहता है, बोलता है, सभी शास्त्र भी बोलता है कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए उसको ज्ञानी की इच्छा और आज्ञा से वर्तना चाहिए। आज्ञा शब्द तो दूसरे मिलेंगे, ज्ञानी की इच्छा माने आज्ञा, मैंने इसकी इच्छा ही आज्ञा होती है, आज्ञा तो आज्ञा होती ही है, लेकिन इसका विकल्प हो वो इच्छा हो वही आज्ञा है। सुनिए, ज्ञान की प्राप्ति जिसको चाहिए उसे ज्ञानी की इच्छा से वर्तन करना, ऐसा ज्ञान आदि सर्वशास्त्र कहता है, ये शास्त्र की आज्ञा है। अपनी इच्छा से प्रवर्तन करने और करते करते अनादि से जीव भटक रहा है। पुतानी इच्छा ये प्रवर्तता अनादि काल की रखियो, आप गुजराती से पुतानी इच्छा ये प्रवर्तता जीव अनादि काल से रखियो। ज्ञान में प्राप्ति जेने इच्छली तेने ज्ञानी इच्छा ये वर्तु एम जिनागवादी सर्वशास्त्र कहे छे। पुतानी इच्छा ये प्रवर्तता अनादि काल थी रखियो छे, भटका है। क्यों अनादि से भटका है? कि ज्ञानी की इच्छा से वर्तन नहीं किया, ज्ञानी की आज्ञा से वर्तन नहीं किया। अपनी इच्छा के अनुकूल जो वर्तता है वो तो अनादि से करता ही है, अभी भी करता है, अनादि से करता है। वो भटका है, भटका रहेगा। जब लोग प्रत्यक्ष ज्ञानी की इच्छा से माने आज्ञा से नहीं वर्तन होगा, तब तक अज्ञान की निवृत्ति होना संभवित नहीं है। या प्रत्यक्ष यानी आज्ञा से ऐसा लिखा है। ज्ञान सुधी प्रत्यक्ष ज्ञानी की इच्छा है એટલે આજ્ઞાએ નહીં વર્તા ત્યાં સુધી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવી સંભવતી નથી। એ સૈદ્ધાંતિક વાત હોવી જ્ઞાની થી હમ તો નિર્ણય આજ્ઞા તો માનતે હૈ, એક વાત હમકો પસંદ નહીં હૈ, વાત નિર્ણય કે ખતમ હો જાતી હૈ।
जैसे अगर प्रत्यक्ष ज्ञानी का हमको समागम अगर नहीं हो तो अगर हम परोक्ष ज्ञानी को प्रत्यक्ष मान लें तो उसमें क्या हर्ज है?
ठीक प्रश्न क्या है कि मानो के हमको प्रत्यक्ष ज्ञानी का समागम नहीं है तो हम परोक्ष ज्ञानी को प्रत्यक्ष मानकर चले तो
उसमें क्या हानि है?
उसमें क्या हानि है, क्या नुकसान है? नुकसान वो होगा कि प्रत्यक्ष ज्ञानी का अस्वीकार हो जाएगा। एक बात उसमें जो सूक्ष्म है वो बता दें कि परोक्ष ज्ञानी का उपदेश उनकी प्रत्यक्षता में सुना हो, ऐसा नहीं बन सकता है। तो उसकी परोक्षता में इस उपदेश को प्रत्यक्ष तुल्य समझकर आराधन करना और प्रत्यक्ष ज्ञानी की आश्रय भावना में रहना, ऐसा योग आगे जो हमको मिल चुका है, अभी वर्तमान में मिले तो हम उसके लिए लालायत है। परोक्ष ज्ञानी को प्रत्यक्षवत मान करके प्रत्यक्षता का निषेध नहीं होना चाहिए, यही कहने का अभिप्राय है। परोक्ष ज्ञानी को प्रत्यक्ष मानने में अगर प्रत्यक्ष का निषेध आता है तो बहुत बड़ी हानि है, और परोक्ष ज्ञानी को प्रत्यक्ष मान करके उनका उपदेश को अंगीकार करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा पाप भी है। दोनों पहलुओं को हम एक साथ बताते हैं। इसलिए
उसमें भी और एक बात है कि अगर हमने पहचाना नहीं है, जैसे गुरुदेव का एग्जाम्पल है, कि हमने गुरुदेव को पहचाना नहीं है, गुरुदेव ज्ञानी थे, ऐसे प्रसिद्ध थे तो हमने भी ज्ञानी मान लिया, तो उनके वचन को हम वर्तमान में प्रत्यक्ष के रूप में ही लेकर के करते रहे सब कुछ और प्रत्यक्ष ज्ञानी का खोज नहीं करे, पहचान नहीं है वहाँ पे पर हम कर रहे, तो क्या ये निषेध नहीं है? तो उसमें भी हानि होगा कि लाभ होगा?
नहीं कर रहा वो बात तो 1% भी ठीक नहीं है, वो बात तो 1% भी ठीक नहीं है। लेकिन परोक्ष ज्ञानी का कोई भी ज्ञानी का गुरुदेव हो, कोई भी ज्ञानी हो, तो कालू हो, अनुभव प्रकाश के लिखने वाले हैं और कुछ भी बहुत सा ज्ञान
या साक्षात शंकर देव हो
साक्षात शंकर देव कई भी परोक्ष ज्ञान पर आचार्य होंगे कुंकुंगाचार्य मधुराचार्य चंद्र आचार्य चंद्रा बहुत से होंगे किसी भी भगवान के आचार्य के ज्ञान के वचन को प्रत्यक्ष तुल्य गिन करके उसका उपदेश अंगीकार करना वो प्रकृति को अच्छी नहीं है वो किस प्रकार से अच्छी है कि कभी कभी किसी सुपात्र जीव को बहुत अच्छी पात्रता होने के कारण से ऐसा होता है कि अरे भूतकाल में ये ज्ञानी लिखे गए वो तो हमारे लिए लिखे गए और हमको प्रत्यक्ष ऐसा बता रहे हैं बोल रहे हैं हमारे सामने बैठकर तो उसको अपने आत्मा में उस उपदेश का असर ग्रहण करने के लिए ये प्रकार लाभदायी है बहुत अच्छा है लेकिन ऐसे परोक्ष ज्ञानी के वचन को पकड़ करके हम कोई छल कर लेंगे कि प्रत्यक्ष ज्ञानी को हम स्वीकार नहीं करें या हम उसका खोज नहीं करें या हम इसके आश्रय भावना में नहीं रहे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हानिकारक नुकसानकारक हो जाएगा ऐसे परोक्ष प्रत्यक्ष के विषय में बहुत सी बातें हैं तो जो बात जिस पहलू से हो जिस परिस्थिति में हो वो भी समझनी चाहिए और उसमें क्या लाभ है वो भी समझना चाहिए पर इसकी विकृति होती है उसी बात की विकृति होती है परोक्ष को प्रत्यक्ष मानने में कोई विकृति आती है तो उस प्रकार की विकृति आती है तो प्रत्यक्ष का निषेध माना जाता है ये कभी होना चाहिए नहीं ये न्याय हमने प्रश्न है यह निकाल सोचा है जब प्रश्न निकला तो आगे कभी इतना स्पष्टीकरण नहीं दिया है इस विषय पर काफी विवाद चलता है अरे हम तो प्रत्यक्ष को परोक्ष को प्रत्यक्ष मानते हैं परोक्ष को प्रत्यक्ष मानते हैं
જ્ઞાની
તરીકે પણ ઓળખવા વાળા જ્ઞાની વેટે
ગણાય
પાત્રજી હોય ઓળખવાની યોગ્યતા હોય તો ઓળખી શકે ઓળખવાની યોગ્યતા હોય એ યોગ્યતા ક્યારે આવે છે કે જ્ઞાનીને ઈચ્છતો હોય ત્યારે આવે છે જો માત્ર જ્ઞાની કો ઈચ્છતા હૈ વહી જ્ઞાની કો પહેચાનતા હૈ જો માત્ર જ્ઞાની કો ઈચ્છતા હૈ પહેચાનતા હૈ વહી જ્ઞાની કો ભજતા હૈ और उसको उत्तम मोक्ष कहने योग्य है कि पत्रांग 335 के बाद 335 नंबर के पत्रांग में वो बात का प्रतिपादन कृपा ने किया है तो यहाँ से एक बात और निकलती है बस सीधी निकलती है ये बात तो जिसको उत्तम कोटि का मोक्ष होना हो उसको क्या करना चाहिए ये बात सीधे निकलती है वहां से मात्र ज्ञानी ने इच्छे छे ओळखे छे अने भजे छे तेज तेवो थाय छे કહેતા વહી એસા હોતા હૈ દૂસરા જ્ઞાની નહીં હોતા જ્ઞાની કોણ હોતા હૈ અને તે ઉત્તમ મોક્ષ જાણો યોગ્ય છે અર્થવિશ્વ છે જો ઉત્તમ મોક્ષ હોતા હૈ વો આગે જા કરકે જ્ઞાની હોતા હૈ ઉત્તમ મોક્ષ માને ક્યા કે ભવિષ્ય કા જ્ઞાની नजदीक के भविष्य का ज्ञानी उसको प्रीस्टेट में उत्तम मोक्ष होता है। ऐसा उत्तम मोक्ष कैसे होता है कि मात्र ज्ञानी को इच्छता है, चाहता है, इसके सिवा कुछ नहीं इच्छता है। मात्र का मतलब क्या, सिवा ज्ञानी हमें कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान नहीं चाहिए तो कि नहीं, ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान ही चाहिए हमें। ज्ञान तो ज्ञानी की बाय प्रोडक्ट है, हमें पीना है नारियल का पानी। कली हमारे तो थोड़ा आशे की बात चली, पीना है नारियल का पानी। अगर हमको समूची नारियल ही मिल जाती है तो हमें ज्यादा लाभ है क्या नहीं है, तो बहुत से नारियल मिलेंगे इसमें से। नारियल लेंगे तो एक तो लेंगे, लेकिन पूरी समूची समूची नारियल ही मिल जाती है तो बहुत बड़ा लाभ की बात है। तो जिसको ज्ञान चाहिए उसको पहले ज्ञानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ज्ञान तो वैसे ही मिल जाएगा उसको, क्योंकि वो तो इसके बाय प्रोडक्ट है। तो एक पत्र में खिंडी भाई को लिखते हैं, तो प्रश्न बहुत करते थे और जानकारी करने के लिए तर्क वितर्क से बहुत प्रश्न निकालते होंगे और जानकारी बढ़ाने के लिए प्रश्न करते होंगे। तो लिखा है कि लगता है कि आपको ज्ञान चाहिए मगर ज्ञानी नहीं चाहिए, तो ऐसा ज्ञान तो शून्य है। ज्ञानी के प्रति भक्ति प्रेम रूप होती है तब तो ज्ञान मिलता है, इसके बिना ज्ञान मिलता नहीं। अगर जो कुछ प्रश्न पूछा और जानकारी हो गई तो इसके लिए क्या लिखा कि ऐसा ज्ञान तो शून्य है। क्या है, ऐसा जानकारी वाला ज्ञान ज्ञान नहीं है किंतु शून्य है। इसके प्राप्त करके तुम क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। शून्य में से क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सुंदर बात आई
ऐसी। एक प्रश्न है, जैसे आप बात कराया कि एकमात्र ज्ञानी को इच्छने का, तो ज्ञानी को इच्छना और एकमात्र ज्ञानी को इच्छना में क्या अंतर है, और पात्रता किसको पकड़ने से आती है, और पात्रता आती है तो परिणमन कैसा चलता है।
ज्ञानी को इच्छता है और एकमात्र ज्ञानी को इच्छता है, इसमें क्या अंतर है, पहला प्रश्न तो वो है। तो जो एकमात्र ज्ञानी को इच्छता है वो सिवा ज्ञानी कुछ नहीं इच्छता है, पर ज्ञानी को भी इच्छता है तो दूसरे को भी इच्छता है। उसमें वास्तव में ज्ञानी की प्रधानता नहीं रहती है। अनादि से जो संसार के प्रसंगों के और पदार्थों के जो मुख्यता है, प्रधानता है, वो ही रहती है। तो दूसरे अर्थ में वो ज्ञानी को इच्छता नहीं है, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। अभिप्राय मेरी बात हो जाती है अनजाने में भी। इसलिए यह कहा कि मात्र ज्ञानी को इच्छता है वही जो पहचानता है और वही उसको भजता है, सर्वत्र वही उसको दिखाई देता है, उसका उपयोग उसके छोड़ करके कहीं जैसे जाता ही नहीं हो, और ऐसे मोक्ष को उत्तम मोक्ष कहना योग्य है। वही ऐसा होता है, वही ज्ञानी होता है, दूसरा ज्ञानी कभी होता नहीं है। आज चाहे कल चाहे कभी भी ज्ञानी को एकमात्र रूप में चाहेगा वही ज्ञानी होगा, दूसरा ज्ञानी होगा नहीं। ज्ञान के ग्रंथ पढ़कर के कोई ज्ञानी हो जाएगा उसमें कोई दम नहीं है, ऐसा कहते हैं वही ज्ञानी होगा। आगे वाला प्रश्न कौन सा
है? यहाँ पे यहाँ से रिलेटेड, यहाँ से
पात्रता का कुछ प्रश्न
था। हाँ, नहीं यहाँ से रिलेटेड एक प्रश्न और आया कि जैसे अभी बात आया कि ज्ञानी वाला जो रहने का, तो उसमें कोई होता है कि निवृत्ति लेकर के भी ज्ञानी के पास रह जाते हैं पर परिणमन नहीं हो पाता है, तो ये पॉइंट भी रहता है, उसका क्या करना?
कोई लोग ऐसे होते हैं कि व्यापार आदि से या परिवार से अलग होकर के छोड़ करके ज्ञानी जहाँ निवास करते हैं वहाँ रह जाते हैं, उनको लाभ नहीं होता है, इसका क्या कारण है? तो वो ज्ञानी की इच्छा को अनुकूल वर्तने वाला नहीं है, ज्ञानी की आज्ञा में रहने वाला नहीं है, इसलिए वास्तव में वो ज्ञानी को नहीं चाहता है, फिजिकल डिस्टेंस में रहता है, फिजिकली वो ज्ञानी के समीप में रहता है लेकिन भाव में दूर रहता है, इसलिए उसको परिणाम नहीं होता है। पहचान भी नहीं है, पहचान हो जाए तो निबेड़ा हो ही जाए, पहचान किसको होती है? ये तो कहा जो मात्र ज्ञान को इच्छता है वही पहचान है, इसलिए कहा।
फिर जैसे दो पॉइंट किए थे उसमें पात्रता किससे प्रकट होती है? एकमात्र ज्ञानी को इच्छने वाले को कि जो ज्ञानी को इच्छते हैं उसको?
एकमात्र ज्ञानी को इच्छता है वही उत्तम मोक्ष बने, उत्तम पात्रता मोक्ष।
ये तो जो ज्ञानी को इच्छता है एकमात्र पने में नहीं इच्छता है, तो क्या वो पात्रतावान नहीं है जी?
इसलिए नहीं है कि वो दूसरी चीज को प्रधानता से इच्छता है और ज्ञान को पीछे रखता है, जो सर्वस्व के देने वाले हैं उनको गौण करता है और जहां से कुछ नहीं मिलता है उसको मुख्य करता है। तो पात्रता कहां से आएगी? यहां से पात्रता आएगी।
तो पात्रतावान जीव को फिर परिणमन में क्या आता है?
बस एक मात्र ज्ञान को इच्छा है वही परिणमन में आता है। तो कहते हैं एक वचन में बहुत भरा है, निबेड़ा हो जाए, अगर उतना ही कर ले तो ज्ञान हो
जाएगा,
कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
एक जैसे ज्यादा नानी का परिवार में आगे इसकी मुख्यता करनी चाहिए, जो जीव मात्र ज्ञानी का परिचय में आवे तो उसका एक से अधिक ज्ञानी का परिचय में आवे,
जिसका ज्यादा लाभ लेता हो उसकी मुख्यता है, जिसकी मुख्यता होगी उसका समझाया जाएगा, पर जिसको जहां से ज्यादा लाभ होता है वह जिसकी मुख्यता करेगा उसका समझाया जाएगा।
गुणानुबंध
मतलब क्या? वहाँ सवाल नहीं है, वहाँ अपने योग्यता का सवाल है, स्पेसिफिक टाइप की योग्यता होती है हर एक में भिन्न भिन्न प्रकार के। एक तो इस काल में एक से ज्यादा ज्ञानी होना मनुष्य को बहुत संभव है, फिर भी एक से ज्यादा होना तो किसका योग ज्यादा रहता है, संयोग क्या किसका ज्यादा बनता है, तो एक सवाल पैदा होता है। तो दूसरा सवाल वो होता है कि किसके वचन से हमारी आत्मा में किसक पहुंचती है अधिक, ये भी एक अनुभव से देखने की चीज होती है। बस यहां से डिसीजन लेगा कि हमको यहां से ज्यादा मिलता है तो वहां चिपकेगा, वहां चिपकेगा, सीधी सीधी बात है, जिसको लाभ होता है वही चुनता है, आत्मा भी बढ़िया है, व्यापारी है, अपने लाभ को देखने वाला है, स्वार्थी है, मतलब ही है अपना प्रयोजन को देखने
वाला। पहचान का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, पहचान के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता, पहचान का कोई ऑल्टरनेटिव तो नहीं है, पहचान के बिना कोई काम नहीं हो सकता,
पहचान की कोई अन्य पर्याय नहीं है,
पूर्व में जो ज्ञानी हो गए उनको हमने पहचाना नहीं, तब तो आप तो उनको पहचानने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता है। तो आप तो वर्तमान में जो ज्ञानी है हमको उन्हीं को पहचानना पड़ेगा। अगर उनको नहीं पहचानेंगे तो पूर्व में जो ज्ञानी हो गए हैं उनको भी पहचान, मतलब उनके शब्द से भी पहचानने का सवाल नहीं आता
है।
ऐसा कोई भ्रम कर ले, ऐसा कोई हम भ्रम कर ले फिर तो कि उनके शब्द से उनको पहचान लेंगे।
पहचान तो परिणति शक्ति किसकी पहचान होती है? कोई शब्द की पहचान होती है, कोई शरीर की पहचान होती है, कोई देश की पहचान होती है, ऐसा दृष्टि क्या हो? पहचान तो परिणति से आती है। तो परिणति तो प्रत्यक्ष हो तो भी क्या परोक्ष परिणति क्या होती है?
हम है ना परोक्ष ज्ञानी को प्रत्यक्ष रूप में तो माने और उनकी आज्ञा जो है प्रत्यक्ष ज्ञानी को माने उसको नहीं माने, तो हमने परोक्ष ज्ञानी को भी माना क्या?
नहीं माना। ठीक है, वो प्रश्न तो देखा है कि हम परोक्ष ज्ञानी को प्रत्यक्ष वत माने पर वो ज्ञानी प्रत्यक्ष की आज्ञा करता है परोक्ष आज्ञा का हम स्वीकार नहीं करता है, तो परोक्ष वाले को माना कि नहीं माना कि नहीं माना। जैसे कृपा जी ने लिखा कि ज्ञान जब लग प्रत्यक्ष ज्ञानी की आज्ञा से वर्तने में नहीं आएगा वहां तक ज्ञान का नाश नहीं होगा। तब ये कहने वाले लिखने वाले जो परोक्ष है तो हम उनको माने और उनकी कही हुई बात को नहीं माने प्रत्यक्ष ज्ञानी वाले, तो क्या हम उसको मानते हैं? उसकी बात को नहीं मानते हैं तो उसको भी नहीं मानते हैं, सीधी साधी बात है। तो इतना सीधा साधा गणित क्यों समझ में नहीं आता है ये प्रश्न होना चाहिए।
अभक्ति के परिणाम हमने किए इसका भय दिखने लगता है सामने।
वो भय वास्तविक है या काल्पनिक है? वो भय है वो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है।
तो फिर ये लगने लगेगा हमने आज तक कुछ किया ही नहीं, फिर आज तक हमने कुछ किया ही नहीं।
सही बात है, आज तक हमने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है उस पर बड़ी बिंदी शून्य लगा देना और आज से नया प्रोग्राम चालू कर देना।
अभी से
आज से मैंने अभी से, वरना जो पूर्वग्रहित मिथ्या आग्रह है वो कचरा बहुत प्रतिबंधक कारण हो जाएगा, उसको तो वैसे ही छोड़ देना। जो कुछ अभी तक समझे ही नहीं, जो कुछ किया वो किया ही नहीं, अब मैं नया चालू करना है फिर से तो करना।
तो डिप्रेशन में आ जाएंगे।
कोई डिप्रेशन में काम करना के उत्साह में क्यों नहीं आएंगे? डिप्रेशन में क्यों आएंगे? कोई जरूरी नहीं है डिप्रेशन में आने का। हमने कुछ किया इसका मतलब क्या है कि हम स्वीकार करते हैं कि हमने भूल किया, तो क्या भूल किया ऐसा स्वीकार करना वो डिप्रेशन का स्टेज है क्या? वो तो यथार्थ है, अपने भूल का स्वीकार करना वो तो सही अच्छी परिस्थिति है, उसकी भी भूल मिटेगी।
तो यही सरलता है,
यही सरलता है। जिसको भूल का स्वीकार नहीं हो असरलता है, तो भूल का स्वीकार हो सरलता है तो अच्छी स्थिति है, इसमें डिप्रेशन की बात के बीच में आती नहीं है।
लेकिन ये भूल भी कब तक हो? भूल का स्वीकारते जाए भूल करते जाए।
जिसको भूल का स्वीकार होता है वो आईदा भूल करने वाला नहीं होता, वो इसी का नाम सही भूल का स्वीकार है। भूल का स्वीकार नहीं करना और भूल चालू रखना ये कोई स्वीकार करने का ढंग होता है क्या? स्वीकार करने का ढंग नहीं है। इस तरह से ठीक है, सब पहलू से चर्चा तो होनी चाहिए, जब ही कचरा निकलेगा सब।